المجيد وقوله الهمناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مکمل اطاعت کا مظاہرہ قیس ابن سعد ابن عبادہ فرما رہے ہیں. لیکن جو اس واقعے کا دوسرا پہلو ہے وہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے, اگرچہ واضح کیا بھی گیا ہے لیکن پھر بھی, اور وہ یہ ہے کہ جن حالات میں مولا متقیان کی خلافت ظاہری اور جس انداز سے مولا کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا جا رہا, دیکھیں جب یہ جملے کہے جا رہے ہیں اس کا مقصد امام کی مجبوری یا لاچاری یا بے کسی نہیں, یا یہ مقصد نہیں ہے کہ ناطاقتی, اور اسی طرح سے اللہ کے رسول کے کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ پیغمبر کو یہ ارشاد فرمانا پڑا کہ یہ عمل صرف اس لیے کیا گیا کہ تم لوگوں کا اتنا اصرار تھا. لیکن ماحول اور حالات کو دیکھیے, آج بھی نجف اشرف میں وہ کنواں, اب کنواں تو نہ رہا لیکن اس کی جگہ تو موجود ہے, جہاں راتوں کو آ کے مولا کو کنویں کے اندر منہ ڈال کے کنویں سے بات کرنا پڑتی ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ علی کا سینہ پھٹ رہا, علی اکیلے رہ گئے, علی تنہا رہ گئے. کس کس ماحول میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ پورا خاندان ہے, انتہائی مخلص صحابی ہیں جن کے اخلاص پر کوئی شک نہیں. عبداللہ ابن جعفر تیار کے بارے میں کون شک کر سکتا, محمد حنفیہ کے بارے میں کون شک کر سکتا, کچھ نام تو میں لینا بھی نہیں چاہتا کہ عام آدمی اصل بات کو سمجھنے کے بجائے ان چیزوں میں الجھ جاتا کہ جس کا کوئی تعلق ہمارے عقائد سے نہیں ہے لیکن اس کو عقیدہ بنا دیا جاتا. تو میں وہ باتیں چھوڑتے ہوئے, اب دو قسم کا پریشر مولا پہ آتا, ہر ایک کو معلوم ہے, اس کو مجھے واضح کرنے کی ضرورت نہیں کہ جنگ صفین کا اختتام نیزوں پہ قرآن بلند کر کے جب کیا گیا, باقی حالات تو سب کو معلوم ہے, اور یہ طے پایا گیا کہ ایک آدمی یہاں سے آئے گا ایک آدمی وہاں سے آئے گا, مولا اپنے آدمی کو نہیں بھیج پا رہے مذاکرات کے لیے اور اس مسئلے کے سیٹلمنٹ کے لیے. اول تو مولا اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے, امام معصوم کا کسی سے سیٹلمنٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, امام حکم دیتا ہے امت کو ماننا, لیکن اتنا پریشان کہ علی کو دشمن قرآن قرار دے دیا گیا کہ یہ قرآن کی بات نہیں مان رہے. دیکھیں میں پھر یہ جملہ کوئی آٹھویں نویں مرتبہ دوہرا رہا ہوں کہ جب ہم مراجع کی مثال دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرجی اور امام برابر, یا چلیں برابر نہ صحیح تو 19-20 کا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن جیسا کہ ائمہ طاہرین نے ہم اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے کہا, ادنا غلاموں کے لیے, جو حالات ہمارے لیے پیش آ رہے ہیں وہی تمہارے لیے پیش آئیں, تبھی امام نے کہا ہماری سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل, کیونکہ وہی حالات وہی واقعات وہی پرابلمز وہی پریشانیاں وہی ڈیفیکلٹیز اور وہی معاشرے اور کمیونٹی کا دباؤ سب تم پر بھی آئے گا. تو اب آج بھی کیا مراجع کے خلاف ایک یہ جملہ بھی نہیں چلتا جی یہ کیا فتوے دیتے ہیں, یہ سب قرآن کے خلاف ہے. اور ایسا آدمی کہتا ہے جسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے, وہ صحیح قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا, لیکن وہ کہتا ہے جی یہ تو سارے فتوے قرآن کے خلاف. سب سے زیادہ جس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, چونکہ وہ اس آیت میں جسے میں نے پہلے دن کی مجلس سے مسلسل سرنامہ کلام بنایا, یعنی حکومت امام زمانہ والی آیت, اس میں زکات کا لفظ آیا, تو سب سے زیادہ اسی کے حوالے سے ہمارے مراجع پہ اعتراض کیا جاتا. بہرحال اب تو ہر ایک کے علم میں آ چکا ہے کہ آیت اللہ سیستانی احتیاط واجب ہے کہ کاروبار کے مال پر بھی خمس دینا ہے چاہے وہ کرنسی نوٹ ہو. لیکن یہ اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. غالباً یا المہندی میں میری مجالس کے آخر میں کسی ایک دن کوئسچن آنسر کا بھی ایک سیشن رکھا گیا ہے, کچھ باتیں وہاں ہوں گی. لیکن اب وہ دیکھیے کہ کس انداز سے بالکل وہی اعتراض کہ جی یہ قرآن کے خلاف فتوے دیتے ہیں, اور وہ تو ساری چیزیں آپ نے ابھی سنی ہی نہیں. آپ سے مطلب یہ ہے مجمع کی اکثریت, ورنہ کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ وہ پوری سیریز پڑھی جو کراچی سے پانچ کتابیں اردو زبان میں مرجعیت کے خلاف اس طرح چھپی کہ اس میں سارے فتوے کوٹ کیے گئے جو ان کے اعتبار سے صریحاً قرآن کے مخالفت میں. میں کتابوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, ورنہ جنہوں نے نہیں بھی پڑھا ان کو شوق ہوگا, وہ جا کے پڑھیں گے. تو جب پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بہک بھی جائے. لیکن خلاصہ یہ ہے ان پانچ کتابوں کا کہ جی یہ سارے کے سارے فتوے یہ لوگ اپنی رائے اور مرضی سے دیتے ہیں اور قرآن کے خلاف, اور پھر نہج البلاغہ کے خطبہ بھی لے کے آ جاتے ہیں کوٹ کرنے کے لیے جس کا کوئی تعلق مرجعیت سے نہیں. مولائے متقیان کے زمانے میں کوئی مرجع نہیں تھا, کوئی مجتہد نہیں تھا. اجتہاد اور مرجعیت کی تاریخ مولا کے بعد سے شروع ہوتی. تو مولا کے اس خطبے کا کیا تعلق ہوگا؟ ایک چیز ابھی عالم وجود میں نہیں. اچھا مولا اگر یہ کہیں کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسے علماء پیدا ہوں گے جو قرآن کے خلاف فتویٰ دیں گے اور ایک حق ہے اور ان کے پانچ نظریے ہوں گے, آئے گا زمانہ تو سمجھ میں آتا. مولا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں, جو اس میں ٹینس سے استعمال ہو رہا ہے, وہ اس وقت کا ہے کہ ابھی اس وقت جو یہ بیٹھے. اچھا خطبے کی ہیڈنگ بھی دیکھی, قاضیوں کے اختلاف کے بارے میں مولا کا خطبہ, یعنی قاضیوں کو کی مذمت, کنڈیم کرنا. قاضی جج بالکل الگ چیز ہے, مرجعیت بالکل الگ چیز. جج کون تھے؟ جج وہ پہلے تین حکمرانوں کے مقرر کیے ہوئے آدمی تھے جو مولا تک کے خلاف فیصلہ کرنے کو تیار تھے. جو واقعات دو چار آپ نے سنے, کہاں کی بات کو کہاں سے لے جا کے ملا دیا گیا صرف اس لیے کہ مرجعیت کی مخالفت کرنا. یا یہ قرآن کریم نے منافقین کی پہلی پہچان بتائی ہے, منافق اس کو نہیں کہتے کہ جس کے مثلا زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو, اسے منافق نہیں کہتے. ہمارے ہاں اس کو منافق کہنے لگے. ہمارے یاسر زبان سے کفر کا کلمہ صادر کر رہے ہیں اور دل کے اندر ان کا ایمان ہے کہ وہ منافق. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, قرآن کی آیت ہمارے یاسر کے لیے نازل ہو کہ ہاں جسے مجبور کیا گیا ہے مگر اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے, وہ کافر نہیں ہوتا, وہ منافق نہیں ہوتا. خیر اب میں بات کو بلا وجہ اتنا پھیلا رہا ہوں, لیکن چونکہ پہلے دن سے پتا نہیں کیا بات, کسی بھی موضوع پہ بات کر رہا ہوں پروردگار خود میری زبان کو پھیر کے ذرا سا اس جانب لے آتا ہے, میں پھر تھوڑا سنبھلتا ہوں اور واپس اپنے اصل موضوع پہ جاتا ہوں. منافقت اس کا نام نہیں ہے, منافقت اس کا نام ہے کہ دل کے اندر کفر بھرا ہو اور زبان پہ ایمان, بس یہ ہے منافقت. چنانچہ اگر ہم گھر میں شراب پی رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بہت ہی متقی اور پرہیزگار بن کے آ رہے ہیں تو اس کو منافقت نہیں کہیں گے. اور قرآن کریم نے اسی لیے کافروں سے زیادہ انٹروڈکشن منافقوں کا کرایا, پہچان بتائی, نشانیاں بتائی. اور عجیب بات یہ کہ قرآن کریم آپ پڑھتے چلے جائیے, کافروں کی نشانیاں اور پہچان ہمیں بار بار یاد نہیں دلائی جا رہی, منافقوں کی نشانیاں بار بار یاد دلائی جا رہی ہیں. بار بار سے میں نے میری مراد کیا ہے, ہر جمعے کی نماز میں چاہے آپ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں, چاہے آپ سورہ منافقون کی تلاوت کریں, چاہے آپ دونوں سوروں کی تلاوت کریں. سورہ نماز جمعہ جہاں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو عام دنوں میں ظہرین کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے, تو اسلامی دنیا میں جہاں وقت ہوتا ہے وہاں سورہ جمعہ سورہ منافقون دونوں کی تلاوت کی جاتی ہے نماز جمعہ. مغربی دنیا میں جہاں اتنا وقت لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو عموماً نماز پڑھانے والے سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں, سورہ منافقون کے بدلے کوئی مختصر سورہ پڑھ دیتے ہیں جو جائز ہے. اور جہاں اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے وہاں پہ سورہ جمعہ بھی نہیں، انہا انزلنا کا سورہ، منافقون بھی نہیں، قلوب اللہ کا سورہ. لیکن جو اتنی مختصر نماز پڑھاتے ہیں لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھ کر، وہ بھی یہ کہتے ہیں اور مجمع بھی یہ سمجھتا ہے کہ اصل ثواب تو سورہ جمعہ اور منافقون کا. اور دونوں سوروں کا موضوع کیا؟ منافق کی پہچان. پہچان قرآن کرا رہا اور ہر ہفتے یاد دلا رہا ہے. چنانچہ بہت ہی مشہور جو آیت، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، منافقوں کی پہچان کہ یہ تمہارے پیچھے آ کے نماز میں کھڑے ہو جائیں. نماز کیا ہے؟ اطاعت رسول کی مکمل ٹریننگ. نماز کیا ہے؟ اطاعت امام کی مکمل ٹریننگ. نماز کیا ہے؟ اطاعت پروردگار کی مسلسل مسلسل مشق. آگئے. لیکن آیت اتنی مشہور ہے کہ شاید یہ جو مجمع آج کی مجلس میں آئے گا، ویک ڈے کی مجلس کے اندر، وہ یہ ساری باتیں تو اچھی طرح سے جانتا ہے. شاید میں تھوڑا سا وقت ضائع کر رہا ہوں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ آ بھی گئے، اطاعت کا مظاہرہ کیا. یہ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جیسے ہی انہوں نے نماز کی آواز سنی اپنے کاموں کو چھوڑ کے بھاگتے ہوئے آ رہے. ظاہری اعتبار سے اسی کا نام اطاعت ہے نا، چار دن کا موضوع، پانچ دن کا موضوع. لیکن آنے کے بعد، اطاعت کا مظاہرہ کرنے کے بعد، نتیجہ کیا نکلا؟ تجارہ. جب تجارت دیکھی اور لغوہ کھیل تماشا دیکھا، ان فضو الہی کا دوڑ کے ادھر گئے، وترکو کا قائمہ، تجھے اکیلا چھوڑ دیا. سورہ جمعہ کی آیت ہمارے یہاں مجلسوں میں بہت پڑھی جاتی ہے، اس کے اعتبار سے بہت پیغام دیے جاتے ہیں، اس کے اعتبار سے مجمع کو بہت کنڈیم کیا جاتا ہے. لیکن یہ دو بہت اہم نشانیاں بتا دی گئی. کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے نماز جمعہ کی آواز سنی اور بزنس میں لگے رہے، جنہوں نے نماز جمعہ کی نودیا آواز سنی. یہاں رک کے پھر ایک بہت چھوٹی ایک بات کہہ دوں، میں ڈر بھی رہا ہوں، گھبرا بھی رہا ہوں. ویک ڈیز کی مجلس، مصائب کا بیان بھی زیادہ، ماتم بھی زیادہ، اور میں موضوع پہ آنے سے پہلے ادھر ادھر اتنی باتیں کر رہا ہوں. لیکن ایک دفعہ پہلے بھی میں نے کہا تھا اور آج پھر عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن جب اچھا خاصا ایک لفظ استعمال کر رہا ہے اور مسلسل، ایک تو جیسے شاعر حضرات کا طریقہ ہوتا، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی مضمون کے ہو تو کیا وہ سو رنگ میں باندھو انیس کی دعا، کہ ایک ہی چیز ہے لیکن مختلف قافیے بدل بدل کے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر قرآن ہزار میں سے 999 جگہ پر ایک ہی لفظ لا رہا اور پھر ایک جگہ پہ لفظ بدل رہا، افلا یتتبرون فی القرآن، قرآن پڑھ رہے تو غور کیوں نہیں کر رہے کہ آخر وجہ کیا پیش آئی؟ جس کی ایک مثال میں نے زکات کے حوالے سے دی تھی، آج دہرا نہیں رہا ہوں، آج نماز کے حوالے سے. ہر جگہ جہاں نماز کا ذکر آتا ہے قرآن کیا کہتے ہیں؟ اقیم و اقام، اقامت الصلاۃ، لفظ قائم آتا ہر جگہ. نماز جمعہ کی بات آئی، قرآن نے لفظ کیوں بدل دی؟ یہ کیوں کہا؟ نودیا، جب تمہیں ندا دی جائے، پکارا جائے اور آواز دی جائے تب آنا. جب بھی کبھی آواز کی بات آئے گی تو پہلا سوال یہ آتا ہے ذہن میں بھی اور شریعت میں بھی، آواز دینے والا کون؟ کیا ہر ایک کو اختیار ہے آواز دینے کا؟ آخری زمانے کی نشانیوں میں یہ نشانی، ظہور امام سے پہلے ظہور امام کی کئی آوازیں بلند ہوں گی. تب ہمیں تو اس کی ٹریننگ دلائی جا رہی کہ ہر بلند ہونے والی آواز کو آواز نہ سمجھو. اب میں اس وقت مشکل عربی لفظ ہی استعمال کر رہا ہوں تاکہ کم وقت میں بات ہو. ندا آسمانی، ظہور امام کی یقینی نشانی ہے ندا آسمانی، ندا آواز. لیکن یہ کہہ کر کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ آواز بلند ہوں، تو ہر ایک کی آواز پہ دوڑ کے نہیں جانا ہے. جس آواز کو ظہور امام کی نشانی قرار دیا وہ جبرائیل کی آواز ہے مثلا. اب جب بھی لفظ آواز آئے گا ندا، وہاں پہ یہ سوال خود آتا. پورے قرآن میں ہر نماز کے لیے ہر جگہ پہ لفظ اقیمو آتا، یہاں پہ نودی آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمعہ کی شرائط عام نمازوں سے الگ ہے. بات یہاں پہ میں روک دیتا ہوں. اس کے حوالے سے بھی مرجعیت پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، لیکن اتنی ساری باتیں جمع نہیں کرنا، مسائل جمع نہیں کرنا، اصولی باتیں بتانا. تو مولا متقیان، اب یہ منافقوں کی دو پہچان، قرآن کریم نے ہر جمعے کو یاد دلانے کے لیے نماز جمعہ کا حصہ بنا دی. ये कौन लोग हैं जो इताअत वाले, जो दौड़ के आए, जिन्होंने अपने बिजनेस बंद कर दिए, जो खेतों में काम कर रहे थे आवाज सुनते ही वहीं पे नामुकम्मल छोड़ा और भाग के आ गए, ये वो लोग हैं। मगर तिजारत और खेल तमाशा, अब ये मुनाफिकों की पहचान। अब मेरा मौजू इस साल मुनाफिकत नहीं है, वरना इस पर भी मैंने 2-3 अशरे पढ़े और उलमा तो पढ़ते ही रहते हैं, अशरा मैं तो एक तालिब इल्म। बात ये हो रही कि अब लफ्ज क्या आया है और हम उसको किससे जाके मिला रहे हैं। काजी, काजी बिल्कुल अलग चीज, उसे मुकर्रर करते हैं जालिम हुकुमरान, काजी शुरा। तो अब ये मर्जियत मुश्तहद इज्तिहाद मेरे मौला की खिलाफत जाहिरी में चीज ही नहीं थी, और कहा जी पूरा खुतबा अली ने मुश्तहदीन के खिलाफ दिया, और उसकी हेडिंग भी है कि मुख्तलिफ काजियों के एक ही मामले में मुख्तलिफ फैसलों की मजम्मत। जुडिशरी बिल्कुल एक अलग डिपार्टमेंट है और पार्लियामेंट बिल्कुल एक अलग डिपार्टमेंट है, मर्जियत है पार्लियामेंट की तरह से कानून बनाती है और काजी अलग चीज। लेकिन ये फ्रॉड और धोखा हम में हो रहा, मुआविया ने तो ये फ्रॉड और धोखा किया ही, जब कहा गया कि ए मुआविया पैगंबर की मशहूर हदीस है कि हमारे यासिर को एक बाकी गुरोह कत्ल करेगा तो अमार तो हमारे हाथ से मारेगा, कहा कि नहीं वो तो अली के वजह से मारेगा, लेकर उनको क्यों आए थे मैदान जंग, गर्दन पे तलवार चलाने वाले हम हैं लेकिन मैदान में लाने वाले तो अली थे ना, मौला को कहना पड़ा। तो फिर तो इस तरह से वैशी जनाब हमजा का कातिल नहीं हुआ, रसूलुल्लाह जनाब हमजा के कातिल हुए कि उनको लेके क्यों आए, लेकिन इससे बड़ा ये फ्रॉड हुआ पत्थरों को जुजदान में रख के कुरान के नाम से बुलंद कर दिया गया, उससे बड़ा ये फ्रॉड हुआ कि झूठा खत लिखकर कैस के नाम से पूरे शाम में और कूफे में फैला दिया गया और उसमें झूठी गवाहियां भी आने लगी। और अली वालों में भी अगर यही खासियत आ जाए कि नहजुल बलागा हर एक के घर में है, कुरान के बराबर रखी हुई, एक मिनट में जाके खोल के देख सकते हैं कि खुतबे का की हेडिंग क्या है, खुतबे का पूरा मौजू मवाद क्या, मैटर क्या, सब साफ साफ लिखा हुआ। मगर जो मर्जियत के खिलाफ 4-5 किताबें लिखी गई उसके अंदर भी हाईलाइट इसी को करके बात की गई, और जो लोग हैं एंटी मर्जियत वो इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दुश्मन का तो काम ही यही, वो ये करेगा तो ताज्जुब नहीं है, वो जब कुरान तक से खेल करेगा, आयत कहीं की होगी इस्तेमाल कहीं कर देगा। अब मैं कैसे ये बात कहूं, लेकिन वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, एक ऐसा बंदा है जो अपने नफ्स को बेचकर अल्लाह की मर्जी खरीदता है। सुमरा इब्ने जुंदब ने 1,00,000 दिरहम लेकर, क्या ये आयत इब्ने मुलजिम के बारे में नहीं बनाई कि जी मैंने खुद पैगंबर से सुना है कि मेरी उम्मत में आगे एक इब्ने मुलजिम पैदा होने वाला, यह कुरान उसका तस्किरा कर रहा है। तो ये तो हम तमाशे देख रहे हैं, मगर सवाल यह है कि जब हमारा वक्त आता है तो हम भी खुद उसी में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इमाम जमाना को सबसे ज्यादा टफ टाइम अपने शियों की जानिब से इसी हवाले से मिलेगा, जो मौलाए कायनात को अपनी इमामत नहीं खिलाफत और हुकूमत में मिला। अली की हुकूमत शुरू हुई तो जो अली को टफ टाइम मिला वही टफ टाइम इमाम जमाना को अपनी हुकूमत की इब्तिदा में मिलेगा। मानने वाले ही बिफर गए, कलमा पढ़ने वाले ही खिलाफ हो गए, अली के हाथ पांव जोड़ के अली को उस बाग से ढूंढ के लाए जो आज भी मदीने के अंदर मौजूद। मौला तो मदीना छोड़ के बाहर चले गए थे जो आखिरी जमाने के हालात हो रहे थे। आखिरी जमाने से मतलब यह है कि हजरत उस्मान की हुकूमत के आखिरी जमाने के हालात, मदीने ही छोड़ दिए, शहर से बाहर वीराने में चले गए। और आज भी मदीने के अंदर वो जियारत है, इसलिए कि जो 1400 साल पहले शहर से बाहर था, अब तो बहरहाल वो डाउनटाउन का हिस्सा है, मदीने के डाउनटाउन का भी। लेकिन वही लोग जो हाथ पांव जोड़ के खुशामद करके अली का जुमला सुनकर के ये फटी हुई जूती ज्यादा कीमती है उस हुकूमत से जो तुम लोग मुझे दे रहे, ये कुत्ते का लाशा जो मरा हुआ कुत्ता सड़ रहा है, कीड़े रेंग रहे हैं, वो ज्यादा कीमती है तुम्हारी दीवी हुकूमत से। फिर भी कहा कि नहीं आप ही की हुकूमत चाहिए, क्या इसी तरह तड़प तड़प के आज हम अपने जमाने के इमाम को नहीं बुलाते, कि मौला हमें तो आप ही की हुकूमत चाहिए, मौला हमें तो आप ही का निजाम चाहिए, मौला हमें तो आप ही चाहिए। और इन बिटवीन अगर आप देखें तो आका हुसैन को भी कूफे वालों ने इस तरह बुलाया, लेकिन अभी बात बहुत ज्यादा फैल गई है, समेटता हूं। तो अब इसके बाद कुरान बुलंद हुए और अली के आम लश्कर ने अली की मुखालिफत की, और इतनी बात मानने को तैयार नहीं है कि अगर मुजाकिरात के लिए कोई आदमी जा रहा तो अली अपनी मर्जी का आदमी भेजे। और यहां जब मर्जी की बात आई तो एक जुमला में और भी इसलिए कह दूं कि हमारी कौम में आजकल वही चीज आहिस्ता आहिस्ता पैदा होने लगी जो फदक के मसले पर या उससे कुछ पहले के हुक्मरानों ने कही कि भाई जो चीज है कुरान है, जो मसले पर बहस करेंगे कहेंगे कुरान में दिखा दीजिए कहां लिखा। हदीस का नाम सुनते ही कुछ लोगों के तो मुंह बन जाते हैं, कुछ लोगों के चेहरे के तासुरात ऐसे होते हैं कि क्या कमजोर और गलत चीज का नाम ले लिया। कुछ लोग साफ साफ कह देते हैं कि हदीसों का क्या भरोसा, झूठी हदीसें भी। लेकिन नहजुल बलागा में मेरे मौला का फरमान, वो जो सेकंड पार्ट है नहजुल बलागा का, उसके लास्ट पेज पे जाइए, 78 मौला के फरमान है, 75-74 जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भेज रहे थे अपना नुमाइंदा बनाकर, कहा खबरदार इन लोगों से जब बहस करना। नहजुल बलागा, आपके बच्चे अगर यहां होते तो फौरन स्मार्टफोन निकाल के नहजुल बलागा के पार्ट टू के लास्ट पेज पे पहुंच भी जाते, अच्छी बात। पढ़ने वाले के ऊपर इतना भरोसा ना करें। बहरहाल मैंने तस्दीक कर ली, ला तखासिस हम बिल कुरान। देखो उनसे बहस कुरान से नहीं करना, हमारे यहां तो हर बहस कुरान से होती है कि कुरान में कहां लिखा हुआ। और मौला कह रहे खबरदार कुरान बीच में लेके ना आना, क्योंकि कुरान में एक आयत के कई माने निकलते हैं, तुम एक इंटरप्रिटेशन करोगे वह दूसरा इंटरप्रिटेशन करेगा, आयत वही आयत होगी। बहुत ही छोटी सी एक बात, इसलिए कि हमारा मजमा जानता आयत थी कुरान के अंदर, शायद कभी कोई हैरान भी होता हो कि ये आयत अथीर जैसी वाज़े आयत आने के बावजूद क्यों नहीं मानते हैं दूसरे मुसलमान। इसलिए नहीं मानते कि इंटरप्रिटेशन अहले बैत का वो करते हैं अजवाज, कहते बिल्कुल ठीक है कुरान ने कहा ये अजवाज नबी है, जनाब खदीजा है, जनाब सौदा है, हजरत आयशा है, हजरत हफ्सा है, इनकी तहारत की गवाही। आयत वही एक आयत जो हमारे नजदीक या अल्लाह के नजदीक अहले बैत की इतनी बड़ी फजीलत, उसका इंकार नहीं करते हैं। कौन इंकार करेगा, कुरान में है आयत। लेकिन अब इंटरप्रिटेशन कहते हैं अहले बैत के ये माने, वो जो आप उलमा से फिर सुनते हैं कि अरबी जबान में अहले बैत किसको कहते हैं, लेकिन उनकी दलीलें भी अगर आप कभी सुने तो आप भी चकरा जाएंगे। इसीलिए बहुत सारी चीजें हम लोग बहुत खुल के नहीं बताते। कुरान करीम में जो हजरत सारा का वाकया है, फरिश्ता आया तो सारा को अहले बैत कह के मुखातब किया, उनकी दलील है कि देखिए बीवी को अहले बैत कहा जा रहा है। लेकिन मैंने ये तो इसलिए इत्मीनान से दोहरा दिया कि मुझे यकीन है कामिल कि चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए और आसमान जमीन पे क्यों ना गिर पड़े, कोई मोमिन इसकी वजह से नहीं बहकेगा और अहले बैत से पंजेतन को नहीं निकालेगा। लेकिन कुरान की हर आयत पे यही बहस इंटरप्रिटेशन के। आया मुबाहिला कभी सुनिए कि क्या उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन आप सर पकड़ के बैठेंगे तो वो लोग कहते हैं जब तुम आया मुबाहिला की तफसीर करते अली और फातिमा तो हम सर पकड़ के बैठ जाते, ये वो लोग कहते हैं। तो मौला ने कहा ला तखासिस हूं, इनसे मुखासिमत यानी इनसे बहस न करना कुरान से, फैन न लहूजू वजू। कुरान की हर आयत के कई माने होते हैं, तुम एक माने लोगे वो दूसरे माने लेंगे, आयत पे दोनों मुत्तफक हैं। इसलिए हदीस रसूल के जरिए से अपनी बात साबित करना। आज मोमिन का सबसे बड़ा मसला यही है कि वो हदीस पर तो भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। अमरजियत के सारे फतावों पे इसलिए एतराज है कि जो कुरान से ये साबित नहीं हो रहे, तो ये देखो हदीस से साबित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वह हदीस का तो पहले ही तस्किरा खत्म कर दिया, लेकिन ये बात बात पहली 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 मौला इतना प्रेशर के अपना आदमी भेजना चाह रहे हैं और कहा जा रहा है कि नहीं ये कौन लोग हैं, ये जो बाद में दुश्मन बने। लेकिन वो कौन लोग हैं जो कैस के मसले में मौला से कह रहे हैं कि मौला सेफ साइड यह है कि इसको हटा दीजिए, वो अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार है, वो मोहम्मद हनफिया है, वो खानदान के दीगर अफराद हैं, حتی مالک اشتر ہیں. اور ایک جملہ جو کل میں نے کہا پوری ایک مجلس کی تمہید تھا, اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجلس عاشورے سے پہلے آ سکے گی یا عاشورے کے بعد. اور وہ یہ ہے کہ محمد ابن ابی بکر کی عظمت اپنی جگہ, لیکن عظمت اپنی جگہ ہوتی ہے, ہر کام کی صلاحیت ہر آدمی میں نہیں ہوتی. محمد ابن ابی بکر اتنے اہم آدمی ہیں لیکن وہ طبیب نہیں ہے, ہماری سرجری نہیں کر سکتے. مالک اشتر وہ اپنی جگہ ہیں لیکن فقی نہیں ہے, مرجع نہیں ہے, مجتہد نہیں ہے, چنانچہ حلال و حرام کے مسائل کے لیے مولا علی ان کو مقرر نہیں کر رہے. قیس اس اعتبار سے اتنے اہم آدمی تھے کہ مولا نے جب یہ مولا کے پاس آ گئے تانے 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 مدینے میں سن سن کے, تو مولا نے کہا قیس مجھے انتہائی صدمہ ہے کہ میں نے تمہیں مصر سے کیوں ہٹایا. تو مولا کیوں ہٹایا جب آپ کو صدمہ ہے؟ نہیں, علی کے اپنے کیمپ میں قریبی جاننے والے, ان میں کوئی منافق نہیں, ان میں کسی کی نیت میں خرابی نہیں, وہ سب اپنے اندازے سے ہی سمجھ رہے ہیں کہ آج کا ماحول اتنا خراب ماحول, ایمان بک رہے ہیں, معاویہ کی رشوتیں چل رہی, کہیں قید بھی نہ بک گئے ہوں, اپنی جگہ سب مخلص. مولا نے کہا اتنا مجھے صدمہ, کیا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ تم میرے پاس آ کے اس طرح خالی بیٹھو؟ اتنے بڑے عہدے سے ہٹایا گیا, جاؤ میں تمہیں آذربائیجان کا گورنر بنا کے بھیجتا ہوں, یہ بھی ایک بہت اہم صوبہ, مصر جیسا تو نہیں, لیکن جو عہدہ تم سے لیا گیا ہے ویسا ہی عہدہ میں تم کو دے رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ وہ گئے اور جیسے ہی صفین کی خبر سنی تو فوراً وہ اپنا عہدہ چھوڑ کے آ گئے کہ نہیں مولا مجھے گورنر ہی نہیں چاہیے, آپ کے پرچم تلے آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنا ہے. یہ تو انہوں نے اطاعت کا بے مثل مظاہرہ کیا. مگر اب ہماری مجلس کتنی رہ گئی؟ آج کی مجلس بھی آدھی ہو گئی, دو مجلسیں اور ہیں شب عاشور تک, اور پھر تو عاشورے کا دن, اور پھر آخری دو مجلسیں, تو ایک اب ایک منزل ہم آگے بڑھتے ہیں. اور وہ یہ کہ یہ جو اتنی اطاعت کا اسلام نے حکم دیا اور پھر ہمیں اس کی ٹریننگ بھی دی کہ اس سے اطاعت ہوگی, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹریننگ وہ کرے نا جو اطاعت کے لیے تیار ہو رہا ہو, تو اس کے لیے ہم تیار کیسے ہوں گے؟ اطاعت کی ٹریننگ ہے نماز روزانہ, روزہ سال میں ایک بار, حج پانچ سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار, اگر وہی جائے گا نا. اب جم کھلے ہوئے ہیں, فٹنس کلب کھلے ہوئے, جوائن وہی کرے گا جسے اپنی صحت کے حوالے سے پریشانی. آپ حضرات سے میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ میں نے چار دن پہلے مذاق میں کہا تھا, لیکن وہ مذاق کا جملہ بھی میں واپس لے رہا ہوں, مجھے وہ جملہ واپس کر دی کہ جی وہ ٹورنٹو میں لوگ مہمانوں کی دعوت نہیں کرتے ہیں. اوہ, اس کے بعد سے جو دعوتیں میرے پاس آئیں اور مسلسل آ رہی ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو لباس میں پہنا ہوں وزن اتنا بڑھ گیا کہ مجھے یہ لباس جو میں چیک کر کے لایا تھا تنگ محسوس ہو رہا ہے. تو وہ تو ایک مذاق کی بات تھی, آپ اس کو اتنا سیریس لے گئے. واپس آ جائیے کہ کون جائے گا فٹنس کلب میں یا جم کو, کون جوائن کرے جسے یہ احساس ہوگا کہ جی ہمیں اپنا وزن کم کرنا ہے یا صحت کا خیال ہے, وہی جائے گا نا. تو اب یہ اطاعت کا راستہ ہے نماز, ٹریننگ, نماز اور حج اور روزہ, مگر کون اس کی جانب جائے گا جسے احساس ہو کہ اطاعت کرنا ہے؟ تو یہ احساس کیسے پیدا ہو, کہ کس چیز کے ذریعے سے؟ ایک آیت قرآن کی پیش کر رہا ہوں, ایک بہت مشہور روایت. اور آیت کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی. اے حبیب کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے. اچھا, ایک مجلس میں نے اس حوالے سے پڑھی تھی کہ اصل محبت اللہ سے, باقی ساری محبتیں اللہ کی وجہ سے. حتیٰ یہ رسول اور امام کا نام بھی میں نے لیا, مجھے خود بہت عجیب لگ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں توہین امامت یا توہین رسالت کر رہا ہوں جب میں نے یہ جملہ کہا کہ ہم رسول سے بھی محبت نہیں کرتے اللہ کی وجہ سے کرتے. یعنی بعض علماء تو اس کو کھل کے اس طرح سے بیان کرتے اور لکھتے, لیکن یہ اسٹائل عموماً وہابیت کا ہے کہ صحیح بات بھی کہیں گے تو بدتمیزی اور گستاخی کے لہجے میں. کسی اگر رسول بھی کبھی اللہ کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ہم رسول کی بات بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ اصل رسالت اللہ کی وجہ سے ہے. جب وہ اللہ ہی کے خلاف چلے گئے تو پھر ہم رسول کو کیوں مانیں؟ بات صحیح بھی ہوگی لیکن جس بدتمیزی اور گستاخی کے ساتھ کہی جا رہی, तो असल मोहब्बत अल्लाह की। अब कुरान कह रहा है अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबे उनी तो मेरी इताअत करो, पैरवी करो आंखें बंद करके। फत्तबे उनी किसे कहते हैं? ब्लाइंडली फॉलो करना। मर्जे की तकलीद होती है, इत्तेबा नहीं होता। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं, फर्क है जहन। जब आप ये कहते हैं कि हम रसूल की तकलीद कर रहे हैं तो आपने रसूल की दर्जे को कम कर दिया। तकलीद से जान छुड़ाने के लिए आपने रिसालत और इमामत के दर्जे को कम किया। क्योंकि बाज लोग कहते हैं हम इमाम जमाना की तकलीद में, इमाम जमाना का इत्तेबा है, इमाम जमाना की इताअत है। लेकिन इस मजमे के सामने तो शायद मैं ये बात वक्त जाये कर रहा हूं। ये सब इस चीज पे इतकाद रखते हैं क्योंकि इनको पहले से पता कि जो इस वक्त मिंबर पे आ रहा है वो यही बातें करेगा। ये मानते हैं तभी आ रहे हैं। सिर्फ यहां पे आयत के एक लफ्ज पे तवज्जो दिलाना, इताअत करो, इताअत करो। कब? अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो। मोहब्बत करोगे तो इताअत करोगे। तो ये जो कहा गया पहले दिन से आज तक, मैंने तो नहीं कहा कुरान की आयतें, इताअत 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 उसकी ट्रेनिंग बताई, लेकिन हम इताअत के लिए तैयार क्यों होंगे? कहा कि ये उसी वक्त होगा जब मोहब्बत करोगे। मोहब्बत वो जज्बा है जो आदमी को किसी की इताअत पे मजबूर करता, मोहब्बत। आइए अब ये तो कुरान की आयत, फिर हदीस, फिर साहिबान ईमान से खिताब है, तो उस हवाले से, उस अंदाज से एक बात, ये क्यों रिवायत में आया? आखिरी जमाने की निशानियों में तो बहुत ज्यादा आया कि मर्द अपनी बीवियों की इताअत करेंगे। वही लफ्ज अता जो हमारा पहले दिन से मौजू बन गए, इजा अमिलत उम्मती खमसता अशरा खसला। जब मौला ने पूछा था या रसूल अल्लाह आखिरी जमाने की पहचान क्या, हम और आप मौला से पूछते हैं, ये वो हदीस है कि मौला रसूल से पूछ रहे हैं, अपने लिए नहीं, हमारे और आपके लिए। अलबत्ता ये हदीस का स्टाइल बड़ा अजीब है, यानी ये हदीस पहले मुसीबतें बता रही है फिर राहत बता रही है। पैगंबर ने फरमाया जब मेरी उम्मत, उम्मती आम इंसान नहीं, मेरी उम्मत 15 काम करने लगी, हल लहुमुल बला, अला अल्लाह बलाओं को उनके लिए हलाल कर देगा, यह रास्ता खोल देगा। अभी तो अल्लाह ने बलाओं को बांधा हुआ है। हल्ला हमारे यहां उर्दू में भी एक मुहावरा है, अरबाब हल्लो अख्त, अकलमंद लोगों को, दानिशमंद लोगों को, क्रीम ऑफ द नेशन को कहते हैं, जो किसी मसले को अख्त माने बांधते हैं, हल माने खोलते हैं। मसले को खोलना और बांधना, तो हल माने खोल देना, बलाओं को खोल दे। अभी अल्लाह ने बलाओं को बांधा हुआ है कि उम्मत रसूल पे ना जाना, इंडिविजुअल हमारा और आपका इम्तिहान होगा। लेकिन ये बार बार आपने उलमा से सुना, कुरान करीम की आयत, वमा कन्ना मुअज्जबीना वअंत फीहिम। ऐ हबीब, नूह की उम्मत जो गलती करे तो अजाब आ जाएगा, और इब्राहिम की उम्मत गलती करे तो अजाब आ जाएगा, और मूसा की उम्मत गलती करे तो अजाब आ जाएगा, और ईसा की उम्मत गलती करे अजाब आएगा, तेरी उम्मत गलती करे वमा कुन्ना मौज़बीन, हम उम्मत को भी अजाब नहीं देंगे, उम्मत को अजाब नहीं देंगे, क्योंकि वह अंता फीहिम, तू इनके दरमियान आ चुका। वरना जो माजी की उम्मतों पर अजाब आया, उन्होंने कौन सा ऐसा अनोखा काम किया जो हम और आप नहीं करते? जिन जिन बातों की वजह से अजाब आया, हमारे यहां भी रोजाना होती है वो बातें। चले बाज उम्मतों पे अजाब आया कुफर और शिर्क की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज। ये अलग बात है कि पैगंबर ने कहा कि छोटा शिर्क तो तुम भी कर रहे, लेकिन छोड़ दीजिए, ये स्टाइल भी थोड़ा वहाबियत का है, जिनको हर काम में शिर्क नजर आता। लेकिन हजरत शुएब की कौम पे अजाब तो शिर्क की वजह से नहीं आया, नापतोल में कमी करते हैं, एक दूसरे का हक मारते हैं। क्या ये हमारे यहां नहीं होता? भाई भाई का हक मार रहा, बहन बहन का हक मार रही, बिजनेस पार्टनर एक दूसरे का हक मार रहे, जिस मोमिन को दूसरे मोमिन का माल मिले। अब ये मैं आखिरी जुमला कहना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन कह भी देता हूं, और तो और मासूमीन के हक को गस करके बैठते हैं, शहजादी कौन है इनके हक को, लेकिन वो एक अलग मौजू भी और बहुत बोला जाता, जिसका नतीजा असर भी हो रहा, रेगुलर खुम्स देने वाले भी हैं। लेकिन मसला मासूम का तो है ही मसला, हमारे और आपके दरमियान जो डीलिंग। छोटी सी बात, जब किसी आदमी का इंतकाल हो जाए तो ये हर एक को मालूम है ना कि चार चीजें ऐसी हैं जिसका किसी वारिस से ताल्लुक नहीं है, सिर्फ बड़े बेटे का हक है अगर मरने वाला मर्द है तो। अब चार में से दो चीजें तो आजकल नहीं है, या शायद तीसरी भी है, चौथी नहीं। किसी बेटे का हक नहीं है, किसी बेटी का हक नहीं है, किसी बीवी का हक नहीं है, किसी बाप का हक नहीं है, किसी मां का हक नहीं है, मरने वाले की बात हो रही, सिर्फ बड़े बेटे का हक है। इसको इस्लाम ने कहा हिबुआ, ये अल्लाह ने गिफ्ट दिया है बड़े बेटे को। हिबुआ माने गिफ्ट। नमाज जाफर तैयार का दूसरा नाम है नमाज हिबुआ, जो पैगंबर ने गिफ्ट की थी हजरत जाफर तैयार को। मरने वाले के बदन के कपड़े हराम है किसी भी वारिस के लिए, उन कपड़ों को खुद इस्तेमाल में लाना ये तो नहीं, किसी गरीब को दे देना ये भी जायज नहीं, यतीम खाने में भिजवा देना ये भी जायज नहीं, तन के कपड़े जो मौत के वक्त है वो गुसल खाने में छोड़ के आ जाना वो भी जायज नहीं, गसाल को देना ये भी गुनाह है कबीरा। सिर्फ बड़े बेटे का हक है, उसकी मर्जी, उसको किसी से पूछना भी नहीं, और किसी दूसरे को चाहे मरने वाले की औलाद हो, चाहे मरने वाले के वालिदैन हो, चाहे मरने वाले की बीवी हो, फिर वो। लेकिन इतना ज्यादा मैंने कराची में इस मसले में गुनाह होते देखे, नेकी की नियत से वो सारे कपड़े उठा के गरीबों को दे दिए या यतीम खाने में भिजवा दिए, तो वही हुआ कि चोरी का माल हम आगे तकसीम कर रहे हैं, गुनाह कबीरा। और मरने वाले की अंगूठी, अंगूठी कीमती चीज होती है, कपड़े भी कीमती चीज होते हैं। इसको कुरान अच्छी चीज माना जाता है अगर कुरान किसी गरीब को दिया जाए, मगर ये सब हराम और गुनाह। मौला का जमाना होता, जो इमाम बैतुल माल के चिराग को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त ना करे, वाकयात मशहूर है तो मैं इशारा करके क्यों ना आगे बढ़ूं, आपका और अपना दोनों का वक्त ज्यादा इसमें क्यों लगाऊं। चिराग गुल कर दी, ये सारे मुसलमानों का हक है, तुम्हारे पर्सनल मामले के लिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, छोड़े उसको। ये वाकया जरा सा हुक्मरान का, अपने सगे बड़े भाई अकील को, मुस्लिम इब्ने अकील के वालिद, उन्हें अपने से नाराज कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो अपने बुढ़ापे और बीमारी की वजह से जरा सा ज्यादा चाह रहे थे जितना उनका हक बनता। ये आके नहीं कहा कि अली मैं तुम्हारा भाई हूं, भाई होने के नाते नहीं, सैयद होने के नाते नहीं, अबू तालिब जैसे मोहसिन इस्लाम के बेटे होने के नाते नहीं, का देखो मैं बीमार हूं, रात को नजर नहीं आता, पार्शली ब्लाइंड, और देखो मैं कितना बूढ़ा हूं, 80 साल का, काम भी नहीं कर सकता। मौला ने नाराज कर दिया, यहां तक कि फिर वहां के में शाम के पास चले गए, घर से वो एक और उसकी एक और लॉजिक, वो तो गए थे शाम में वो शियत फैलाने, ताकि जब ये अहले बैत का लुटा हुआ काफिला बाजार शाम में पहुंचे तो कहीं 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 हक की आवाजें बुलंद हो। लेकिन मौजू बदल रहा, बात ये हो रही, सैदानी नाराज हो गए, बैतुल माल से जब पैसे दिए गए, कहा कि मौला वो जो अभी अभी औरत गई है, आपने जितना उसको दिया उतना ही मुझे दिया, ये कौन सैदानी होगी, खानदान अहले बैत, ये पहली जनरेशन चल रही है अभी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता वरना फिर तकरीर असल मौजूद रह जाएगा, जहन कहीं और चले जाएंगे। लेकिन कहा कि मौला आपने जितना उसको दिया उतना आपने हमें भी दिया, मैं सैदानी हूं, रसूल की औलाद हूं, रसूल के खानदान की हूं। मौला ने कहा जो कुछ इसका अजर है वो तुम्हें आखिरत में मिल सकता है, दुनिया में सब बराबर। कहा मौला ये सैदानी कह रही है, मौला आपसे पहले के जो हुक्मरान थे, कौन थे, अली से पहले के हुक्मरान, हर एक को पता, जब कभी मैं जाती थी उनके पास तो वो हमेशा बैतुल माल से मुझे ज्यादा देते थे दूसरों के मुकाबले। मौला ने कहा वो जुल्म करते थे, अपने सियादत को और अपने तकवे को कभी इस्तेमाल न करना दौलत दुनिया के खातिर। अब ये मौला इतना सख्त, और ये देखिए हमारे यहां ये मसला किस कसरत से पेश आता। अच्छा अजीब बात यह है कि लोग एक वक्त में दो मुतजाद बातें अपनी जबान पे लाते हैं, कंट्राडिक्टरी बातें एक वक्त, और एक बात तो यह भी कहते हैं कि जी हम अली से मोहब्बत करते हैं, ये बरहक, ये बात सही, मैं वहीं जा रहा था कि मोहब्बत इताअत पैदा करती, तो अली की मोहब्बत है तो अली की इताअत होगी, ये आखिरी जुमला मुझे कहना था, चूंकि वक्त आ चुका है मसाइब का, तो मैंने जल्दी से पहले कह दिया अभी दो चार मिनट और मैं आपका वक्त लेता हूं फिर इस जुमले पे आता हूं। मोहब्बत इताअत पैदा करती है, अली से मोहब्बत करते हैं, और फिर जब जरा सा दुनिया में कोई प्रॉब्लम और तकलीफ आ जाए चीखने लगते हैं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक खाली मुल्ला की नहीं, हर मोमिन की दौड़। जो फरियाद, जो कंप्लेन, जो शिकायत जमाने की वजह से, जो आपके प्रॉब्लम है, सिर्फ उस बारगाह इलाही में पेश कीजिए, सिर्फ बारगाह इमामत में पेश कीजिए। हर जगह बैठ के चीखना, धारना, अपने मसाइल बयान करना, हत्ता ये बहुत एहतियात से जुमला कह रहा हूं, बहुत ज्यादा दुआएं इस हवाले से मंगवाना, ये भी इस्लाम ने पसंदीदा करार नहीं दिया, मना भी नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि अब ये दो बातें जो है ना, ये कंट्राडिक्टरी, अली से मोहब्बत, देन आई वॉज गाइडेड आगा तेजानी की इतनी बहुत मशहूर किताब, एक जमाने में तो बहुत ही पॉपुलर थी, उसमें वो वाकया लिखते हैं ना कि जब शहीद बाकर सदर से मेरी दूसरी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात हुई तो शियत कबूल कर ली, फिर मैं चला गया अपने वतन त्यूनिस के उस शहर में जिसका नाम तेजान है, त्यूनिस का एक बहुत मशहूर शहर है, वहीं से इनका ताल्लुक है। फिर जब अगले साल मुझे दोबारा जियारत का मौका मिला, ये गैर शिया अपनी कौम के आलिम है, मोमिन बने हैं, वापस दोबारा आ रहे हैं, शहीद बाकर सदर से मुलाकात हुई, तो शहीद सदर ने उनके हाथ पे शियत कबूल की थी लास्ट विजिट में, सवाल किया कि क्या गुजर रही है, कहा बहुत बुरी, मैंने दीन हक कबूल किया, मेरा पर्सनल मामला है, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी और से भी नहीं कह रहा हूं, पूरा खानदान, पूरा महल्ला, पूरा शहर मेरा दुश्मन हो गए, पहले मैं इतना काबिल एहतराम आलिम था कि लोग नमाज पढ़ना सआदत समझते थे कि इतने बड़े आलिम के पीछे नमाज, अपने झगड़े तय कराना, मेरे पास आना, दोनों फरीक राजी होते थे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक आदमी, अब कोई सलाम करने को रवादार नहीं है, बिला वजह की दुश्मनी ना करे सलाम, लेकिन दुश्मनियां मुखालिफतें। शहीद ने कहा तो क्या आपको पैगंबर की वो हदीस नहीं पता कि किसी ने आके रसूल खुदा से कहा कि या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मौजू आज था हमारा मोहब्बत और इताअत का रिश्ता, पैगंबर ने कहा मुबारक हो, दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर तुम कामयाब हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू वाला पैगाम कहा, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं आपके भाई अली से भी इतनी ही मोहब्बत करता हूं, तो कहा कि बस तैयार हो जाओ मुसीबतें परेशानियां बर्दाश्त करने के लिए, सारी दुनिया बिला वजह तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी, और कहा कि मैं आपके बेटे हुसैन से भी इतनी मोहब्बत करता हूं, कहा बस तैयार हो जाओ रोजी के दरवाजे तुम पे हर तरफ से बंद किए जाएंगे, लेकिन अली की मोहब्बत का मतलब यह है कि आप तीरों और तलवारों को इनविटेशन दे रहे हैं कि आओ और आकर मेरे ऊपर मुझे अपना टारगेट बनाओ। चुनाचे नहजुल बलागा के तीसरे पार्ट, आज दूसरे पार्ट की एक हदीस आई, उसका रेफरेंस तो आसान है कि सेकंड पार्ट का लास्ट पेज, और ये तीसरे पार्ट की हदीस है कि जो हम उससे मोहब्बत करता, मुझसे मोहब्बत करने वाला पहले अपने घर में एक चादर मंगवा ले, सब्र की चादर, जितना मुझसे मोहब्बत करेगा उतना उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और अगर उसके पास सब्र नहीं है तो मेरी मोहब्बत में बाकी नहीं रह सकता। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग मोहब्बत भी अली से करते हैं लेकिन सब्र भी नहीं होता, तो भाई अली की मोहब्बत नहीं होती है, आप देखेंगे ऐसे लोग, वो यकीनन अली से मोहब्बत कर रहे हैं लेकिन इताअत अली की मंजिल पे नहीं है, छोड़ देते हैं फिर इताअत का रास्ता। भाई बहुत ज्यादा माली मुश्किलात है, कैनेडा में तो नहीं होती, पाकिस्तान में होती, हराम के रास्ते पे चले गए, फ्रॉड के रास्ते पे चले गए, चीटिंग के रास्ते पे चले गए। चले मैं बहुत ही आम मिसाल दे दूं जो आज की मजलिस जहां पे पहुंच गई उससे जरा मैच नहीं कर रही, लेकिन मैं कितने लोगों को जानता हूं सिर्फ इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों का स्कार्फ या हिजाब उतरवा दिया कि शादियां नहीं हो रही, और बाप के लिए जवान बेटी और शादी ना हो कम अज कम पाकिस्तान इंडिया में एक मसला, यहां का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोहब्बत अली की है तो पहले चादर तैयार करना, हर मुसीबत का सामना करना, तैयार रहना इसके लिए। बल्कि वाकयात है तारीख में कि जो अली के सही मानों के शिया थे, जब उनके घर में मुसीबतें नहीं आती थी तो वे एक दूसरे से सवाल करते थे कि क्या हम अपने मोहब्बत में सच्चे हैं कि नहीं, और जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती थी कहते थे अब इत्मीनान हुआ कि हाँ हम अली की मोहब्बत में सच्चे हैं, तब दुनिया हमारी दुश्मन बनी। वाकयात पढ़ने का वक्त नहीं है, आज पूरी तकरीर मैंने कर दी, कितनी खुश्क हो गई क्योंकि एक वाकया भी बयान नहीं कर पाए। अब ये दो मुतजाद चीजें, एक तरफ आप कहें कि अली से मोहब्बत है, एक तरफ आप कहें परेशानियां बहुत। ये शिकवा और ये शिकायत करने का आपको हक है, लेकिन वह अंतल मुस्तान व इले कल मुश्तका, जितनी शिकायत है या अल्लाह की बारगाह में करो या जो अल्लाह के नुमाइंदे रसूल अरिमा आवाम के सामने इतना आए कि भाई हमारी परेशानी है, दुआ कीजिए कि हल हो जाए। लेकिन बाद लोगों की आदत जरा इससे मुख्तलिफ होती। तो ये दो कंट्राडिक्टरी चीजें, अली वाला है हर मुसीबत और परेशानी का सामना करेगा, बल्कि सही मानों में अगर मोहब्बत तो रोजी का दरवाजा बंद होगा, अगर मोहब्बत अली से है तो वो और मुतमईन होगा। लेकिन अब ये मैं मुतमईन को समझाने का वक्त मेरे पास नहीं, जहां मोहब्बत आएगी वहां पे मेरी ताकत आएगी। आखिरी जमाने में लोग बनाए अल्लाह उनके लिए खोल देगा, बाकी बातें कल होगी। लेकिन जल्दी से एक छोटा सा वाकया पढ़ी दूं, बहुत छोटा सा। आ गया गुलाम हबशी, या अमीर अल मोमिनीन मैंने चोरी की है तो मेरा हाथ काट दीजिए, हाथ काट दीजिए हाथ। हम तो इसके लिए भी तैयार नहीं है कि जरा बहुत अच्छी हमारी गाड़ी है तो जरा उससे एक दर्जा नीचे हो जाए। ये क्या कर दिया मौला ने, ये क्या अल्लाह ने कर दिया, ये क्या हमारे घर में मुसीबत आ गई, हाथ काट दीजिए। फिर वाकया मशहूर है कि मौला ने मना किया, हाथ नहीं काटा। क्यों? इल्म इमामत के जरिए से हाथ नहीं कटता है, वो सिर्फ जमाने के इमाम फैसला करेंगे। और जाहिरी तौर पर यह है कि जब तक कि दो आदिल गवाह ना हो तुम्हारे जुर्म के सजा नहीं होगी, या जितने आदिल गवाह चाहिए उतनी मर्तबा तुम खुद अपनी जबान से इकरार करो। जिस जुर्म में चार गवाह चाहिए तो चार बार कहना पड़ता है कि मैंने ये गुनाह किया, तीन बार के बाद भी अगर वो जरा पछता के चला गया जाने दो। चोरी में दो गवाह चाहिए, मौला ने सुनी नहीं उसके बाद। या अमीर अल मोमिनीन मेरा हाथ काट दीजिए, जब दो बार हो गए उसके बाद भी, चाहे तू मजबूर हो यानी कोई मजबूरी, चाहे तेरे घर में फाके हो का कोई फाके नहीं, चाहे तुझे मसला शरी नहीं मालूम था, क्योंकि उस जमाने के गुलाम जो थे वो नए नए मुसलमान होते थे, का नहीं मसला शरी भी मालूम था, का काट दो हाथ, काट दिया हाथ, हाथ कटा ना। अब हाथ कटा मस्जिद कूफा के उस सहन से निकला जहां आज भी आप जाते हैं, दक्कतुल कजा और बैतुल तश्त। अली सारे फैसले कहां करते थे? दक्कतुल कजा पे करते थे, और मस्जिद से बाहर निकला। इब्ने कुवा जो उस वक्त मस्जिद में बैठा है, जैसे रसूलुल्लाह के जमाने के मशहूर मुनाफिक का नाम है अब्दुल्लाह इब्ने उबई, मौला के जमाने के मशहूर मुनाफिक का नाम है इब्ने कुवा, वो बैठा था, वो दूसरे दरवाजे से निकला। आपने भी देखी है मस्जिद कुफा कितने दरवाजे, दूसरे दरवाजे से निकला, राउंड लगा के उस गुलाम के सामने बाजार में आ गए। हैं ये क्या हुआ, तुम्हारा हाथ कट गया, कटी हुई उंगलियां नजर आ रही हैं, ये क्या हुआ, ये जुल्म किसने किया, किसने तुम्हारा हाथ काटा? फिर आपको मालूम है वाकया बहुत मशहूर, कता यमीन अमीर उल मोमिनीन इमाम उल मुत्तकीन कातिल उल मुशरिकीन कायद उल हुर्र अल मुहज्जलीन वसी उर रसूल ज़ौज अल बतूल सैफुल्लाह अल मसरूर अल मुसल्ली लिल क़ब्रतैन अत्तामे बिरहमतैन असदुल्लाह अल ग़ारिब मज़हर अल अजाइब वल ग़राइब इमाम अल मशारिक़ वल मग़ारिब अली इब्न अबी तालिब। वो बाजार कूफा में कटे हुए हाथ को दिखा के कसीदा पढ़ रहा, मेरा हाथ किसने काटा, मेरा हाथ मोमिनों के मौला ने काटा, मुशरिकों के कातिल ने काटा, मेरा हाथ उसने काटा जो सारे मुसलमानों का अमीर है, मेरा हाथ उसने काटा जो बतूल का शौहर है, जो वसी रसूल है, जो अल्लाह की एक नंगी तलवार है, जो दो किबलों की जान में नमाज पढ़ने वाला है, जो इमाम मशारिक और मगारिब है, उसने मेरा हाथ काटा। ये इतना लंबा कसीदा, और वो अभी मस्जिद के बाहर ही गया, मस्जिद में किसी ने जाके कहा मौला जिसका आपने हाथ काटा वो तो आपके फजाइल बयान कर रहा। मौला ने इमाम हसन को बुला के कहा बेटा हसन अलैका बे अम्मे कल अस्वद, जाओ अपने चचा को लेके आओ, बे अम्मे कल अस्वद आका हसन मुश्तबा नूर खालिस नूर अव्वल, उससे कह रहे जाओ अपने चचा को लेके आओ। अल अस्वद जो गुलाम उमूमन अफ्रीका के होते थे, तो रंग के एतबार से अस्वद, जुर्म के एतबार से चोरी, हाथ कटा हुआ, स्टेटस के एतबार से गुलामी का चचा चचा। मौला ने कहा मैंने तेरा हाथ काटा, और जरा सी वक्ती नाराजगी भी नहीं, वक्ती कभी वक्ती नाराजगी तो हो जाती है ना। कहा मौला मैं तो आपका एहसान अदा करते करते जिंदगी गुजारू, कभी ना काफी है। एहसान हाथ काटा, कहा कि हाँ आपने मुझे इस काबिल बनाया कि अब मैं जन्नत में जा सकता हूं, अगर आप ये सजा ना देते मैं जन्नत के काबिल ना होता, आपने मेरे ऊपर एहसान किया है। मौला ने मजमे को देखा क्योंकि इसमें मेरा कुआ भी आके बैठ गया और कहा याद रखो कि हमारा जो दुश्मन है, अब ये अरबी मुहावरा है, अगर उसके पूरे हलक से पेट तक उसको शहद से भर दो या उर्दू में कहेंगे उसको पूरी दुनिया दे दो तब भी वो हमारी दुश्मनी नहीं छोड़ेगा, और जो हमारा मोहब्बत करने वाला उसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दो, तलवार से 70 टुकड़े कर दो तब भी वो हमारी मोहब्बत को नहीं छोड़ेगा। ये कहे कि अबा हाथ में डाली 2 रकत नमाज, नमाज 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 तो बहुत है, और फिर जो अबा हटाई तो उसका हाथ ठीक हो चुका था, लेकिन मसला मौला का वो जुमला था, मोहब्बत का तकाजा है कि बदन के टुकड़े टुकड़े हो, अली टुकड़े टुकड़े करे चले, कोई जिहाद और जंग का मसला हो तो अलग बात है, यहां तो सजा दी है इस्लामी। हम और आप तो इसी खुशी के मारे इंतजार कर रहे हैं कि इमाम जमाना आएंगे सबको सजाएं देंगे अब तो बच निकलेंगे। हमारा और आपका इंतजार ये, वहां अली ने ऐसे शख्स को सजा दी जो अली का इतना मुखलिस मानने वाला है, और ये कह के कि या हसन अलैका बे अम्मिकल अस्वद, जाओ और जाके अपने इस अस्वद चचा को लेके आओ। ये होती है मोहब्बत, जब ये मोहब्बत है तो इताअत की ये मंजिल आएगी कि हाथ काट दी। एक तो है कि सिपाही साहबा और अलकायदा और दाइश हमारा हाथ काटे, वो तो फिर भी आदमी हुजर इब्ने अदी की तरह शुक्र की नमाज पढ़ेगा। एक है खुद वो इमाम हमारा हाथ काटे जिसका नाम लेके हम दुनिया से जंग कर रहे हैं। मौला आप भी आप ही के नाम पे तो हमने अपनी औलाद कुर्बान कर दी। मगर यही होती है वो मोहब्बत जो हकीकी मोहब्बत है, जो इताअत चाहती। मगर ये वाली मोहब्बत भी कब पैदा होती, जब आदमी ये देखता कि मौला ने हमसे कुर्बानियां बाद में मांगी है, पहले खुद कुर्बानियां दी। जब हम ये देखते कि अगर ये कहा कि मेरे चाहने वाले का बदन टुकड़े टुकड़े हो जाए तब भी वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जब हम ये देखते हैं कि अली ने अपने पोते और हुसैन ने अपने भतीजे कासिम के बदन के टुकड़े टुकड़े होने को पहले बर्दाश्त किया फिर हमसे और आपसे कुर्बानियों की तवक्को की। हसन और हुसैन में आपस में कितनी मोहब्बत, हसन और हुसैन की मोहब्बत दो भाइयों की मोहब्बत नहीं है, एक ही नूर के दो जूज, कितनी मोहब्बत। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हसन की निशानी कासिम हुसैन को कितना प्यारा हो। अब करबला का मसला यह है कि वहां इतनी शख्सियतें जमा हो गई कि हर एक के फजाइल सही मानों में पढ़ने का वक्त भी नहीं मिलता। वरना याद रखी कि आम घरानों का यह दस्तूर और रवाज है कि अगर किसी का भाई मर जाए और उसका छोटा बच्चा यतीम हो जाए तो चचा बाप से ज्यादा उसका ख्याल करता है, अपनी औलाद से ज्यादा उसका ख्याल करता है। देख लीजिए आप किसी भी शरीफ घराने में, ये तो कायनात का शरीफ तरीन घराना, आम घरानों में भी देख लीजिए कि अगर ऐसा हो कि भाई मारा मर गया उसका बच्चा यतीम है तो अपने घर में हम कोई चीज लाएंगे अपनी औलाद को बाद में देंगे, पहले उसका ख्याल करें। कासिम हर वक्त चचा की आंखों के सामने और चचा अजीब अंदाज से पाल रहा। और यही मसला जैनब कुबरा का भी, यकीनन जैनब की हुसैन से मोहब्बत तो बेमिसल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नऊज़ु बिल्लाह जैनब हसन से मोहब्बत नहीं करती थी या कम करती थी। और वहां भी यही मसला, हुसैन का अकबर तो इस हालत में जैनब के पास है कि जैनब को पता है कि अकबर का बाबा बहरहाल जिंदा, मगर कासिम इस तरह से जैनब के सामने आए कि जैनब को पता है कि ये यतीम हो चुका, मेरा भैया मारा गया। आम यतीम बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा अहमियत देने वाला घराना तो कहां हसन मुश्तबा का यतीम। अजीब अंदाज से कासिम अहले बैत के इस घर में पल रहा, चाहे हुसैन हो चाहे जैनब, अपनी औलादों से ज्यादा कासिम से मोहब्बत की जा रही। और फिर किसी भी मां से पूछिए अगर वो जवानी में बेवा हो जाए, शौहर का सुहाग तो उजड़ गए, शौहर की निशानी बहुत ही छोटा बच्चा अगर उसकी गोद में है तो अब इस मां की सारी तमन्नाएं सारी उम्मीदें इस बच्चे के साथ है उसको देख देख के ये मां जिएगी, वरना जवानी में अगर बेवा हो गई तो कभी दिल चाहता है कि मैं भी मर जाती, मगर जब वो शौहर की निशानी और इतनी कम से निशानी। यही वजह कि कई वाकयात मिलते हैं कासिम के बचपने के भी कि उम्मे फरबा कितना परेशान होती थी। एक वाकया मैंने पिछले साल भी पढ़ा, दो साल पहले भी पढ़ा था, बहुत छोटा सा। एक सुबह को जब उम्मे फरवा नींद से बेदार हुई तो ज़ैनब कुबरा, हसन दुनिया से चला गया है, अब उम्मे फरवा की सारी देखभाल और ख्याल ज़ैनब की जिम्मेदारी। चुनाचे रोजाना सुबह ज़ैनब आके उम्मे फरवा की खैरियत तो दरियाफ्त करती। जब ये सारे घराने, ये पूरा घराना, इनके सारे घर बहुत करीब 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 के दीवार मिले हुए, सारे घर अंदर से कनेक्टेड, रोजाना सुबह को ज़ैनब आती, उम्मे फरवा खैरियत तो है, कोई मसला, कोई हाजत, कोई जरूरत। मैं फिर एक जुमला कह दूं कि ये हमारे यहां एक आम शरीफ घराने का भी यही दस्तूर और रवाज है। ये तो कायनात का मोहतरम तरीन घराना है, कायनात का शरीफ तरीन घराना है, कायनात का करीम तरीन घराना। जब मदीने की वो खवातीन, जब यजीद के लश्कर ने मदीने पे हमला किया और चौथे इमाम ने अपने घर का दरवाजा खोल कर इन तमाम औरतों को अपने घर में जगा दी और उन्होंने कहा, खुदा की कसम कभी अपने बाप के घर में हम इतने आराम से न रहे, अपने शौहर के घर में इतने आराम से न रहे, जिस इज्जत और एहतराम के साथ हुसैन के इस फर्जंद ने अपने घर में हमको रखा। इज्जत भी दी, जरूरत भी पूरी। ये आम औरतें मदीने की, बेवा औरतें, ये तो फरवा रोजाना आती है। आज जो आई तो देखा कि फरवा चेहरे पे बहुत ज्यादा परेशानी, घबरा गई ज़ैनब। फरवा क्या बात है, खैरियत तो है? कहा कि शहजादी खैरियत है? कहा कि नहीं, तेरा चेहरा बता रहा है तू बहुत परेशान। उम्मे फरवा ने कहा, शहजादी मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा। कहा जाता है कि नमाज शब के आखिरी वक्त में जो ख्वाब देखा जाए, फजर से पहले जो ख्वाब देखा जाए वो सही निकलता। मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा और आंख खुल गई और मेरा दिल बहुत बेचैन। वाकया जरा लंबा है कि इसने इतने जल्दी उम्मे फरवा ने नहीं बताया, लेकिन चूंकि मेरे पास वक्त कम है और असल जुमले तो इसके बाद के। ज़ैनब ने कहा, क्या ख्वाब देखा है? कहा, शहजादी मैंने देखा कि मैं जन्नत के एक बाग से गुजर रही हूं। जन्नत का बाग है, बेहतरीन दरख्त है, सब्जा है, बेहतरीन फूल है, मगर उन फूलों में सबसे ऊपर सुर्ख रंग का इतना खूबसूरत फूल है, इतना खूबसूरत कि मेरा दिल चाहा कि ये फूल मैं खाली देखूं नहीं, इसको तोड़ के अपने पास रख लूं। चुना के मैंने हाथ बढ़ा के वो फूल तोड़ा, मगर वो फूल कोई बहुत भारी चीज नहीं, मेरे हाथ से छुट के जमीन पे गिर पड़ा और उसकी सारी पत्तियां जन्नत की जमीन पे बिखर के रह गई। शहजादी अभी मैं ये मंजर देख रही। फिर अगला जुमला उम्मे फरवा ने ऐसा कहा जिससे ख्वाब अपनी जगह, वो ख्वाब 100% सच्चा हो गया, क्योंकि मासूम जिस ख्वाब में आ जाए। मैंने देखा कि वहीं से मेरा आका, मेरा मौला, मेरा इमाम, मेरा वाली, मेरा वारिस हुसैन गुजर रहे। जैसे ही देखा कि जमीन पे ये फूल की पत्तियां बिखर गई, उन्होंने वो फूल की पत्तियां एक एक करके उठा के अपने आबा के दामन में रखी और लाकर मेरी गोद में ये पत्तियां डाल दी। अब शहजादी मेरी आंख खुल गई। अब मेरी समझ में नहीं आता कि इस ख्वाब का मतलब क्या। ज़ैनब कुबरा आलिमा गैर मुअल्लिमा फहीमा गैर मुफहिमा, लेकिन कहा कि वाकई ख्वाब ऐसा है कि मैं भी नहीं समझ पाई। चलो भैया हुसैन से पूछते। सुबह का वक्त है, अभी अजान में चंद दकीके बाकी। ख्वाब सुनाया, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। ज़ैनब ने कहा, भैया रो क्यों रहा है इस ख्वाब में? कहा, मैं नहीं बता सकता ये ख्वाब की ताबीर क्या है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन सिर्फ एक चीज बता सकता हूं, मैं भी जिंदा होऊंगा, तू भी जिंदा होगी, फरवा भी जिंदा होगी, जब ये ख्वाब की ताबीर हम तीनों की समझ में, हम तीनों के सामने एक साथ आएगी। और वो रात आ गई, और वो रात आ गई जब इस ख्वाब को पूरा होना, यानी शब आशूर। बहुत मैं मसाइब को की आखिरी मंजिल पे जाने के लिए वाकयात को समेटता हूं। ताबीर हम तीनों के सामने आएगी और वो रात आ गई। आधी रात का भी वक्त गुजर गया। सूरज डूबते ही हुसैन ने मर्दों का इम्तिहान लिया। आधी रात को हुसैन ने करबला की सैदानियों और खवातीन का इम्तिहान लिया। शब आशूर के मसाइब में हर आलिम पढ़ता है, मुझ जैसा तालिब इल्म ही पढ़ेगा। और उसके बाद जब शब आधी रात गुजर गई, अब सारे इम्तिहान हो गए, हुसैन अपने खेमे में, कौन सा खेमा, वो आज भी खेमा गांव में मौजूद। और अब हुसैन वो इबादत अंजाम दे रहा है जिसके लिए एक रात की मोहलत मांगी थी, कि हुसैन को ऐसा लगा कोई मेरे पहलू में आके बैठा। आंखें खोल के देखा, क्या देखा, मेरा यतीम भतीजा कासिम मेरे खेमे में मेरे पहलू पे बैठा। एक मर्तबा कहा, कासिम बेटा रात के इस वक्त, आधी से भी ज्यादा रात गुजर गई, ये यहां बैठने का वक्त नहीं है, जा अपनी मां के पास, तेरी मां खेमे में अकेले, मेरे हाथ का जो डायरेक्शन है वही खेमों का भी डायरेक्शन। आप खेमा गाल गए आका हुसैन के खेमा, वो आप जाइए राइट साइड पर, वो आखिर में सैन में जनाबे उम्मे फरवा का खेमा, का मां के पास जा, ये आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर गया, तेरी मां अकेले है तना। कहा चाचा तो मैं तो अम्मा ही के पास था और अम्मा ही ने मुझे यहां पे भिजवाया है और ये सवाल दे के भिजवाया है कि मेरी मां मुझसे कहने लगी। कासिम बेटा, तू बेटा तो हसन मुश्तबा का है लेकिन फरवा तेरी मां है, दूध मैंने पिलाया, कल के जिहाद में तू मैदान में जाके लड़ेगा ना, ऐसा तो ना हो तेरे कदम पीछे हट जाए और दुनिया कहे कि हसन का बेटा तो पीछे ना हटता, ये मां के दूध की खराबी। जाके आका से सिर्फ इतना पूछ के आ जा कि कल के शहीदों में तेरा नाम है कि नहीं। ये दो जुमले याद रखिएगा, एक जुमला मैं तीन दिन पहले मजलिस के शुरू में पढ़ चुका हूं। दो जुमले, उम्मे फरवा इतनी शर्मीली खातून थी कि कभी आका हुसैन से बराह रास्त बात ही नहीं की, वो इमाम वक्त है, हसन के छोटे भाई हैं, मगर वो शर्म हया का पैकर, कभी कोई बात बराह रास्त नहीं की। और नंबर दो, जो भी बात होती जनाब जैनब से होती, लेकिन जनाब जैनब से कभी कोई चीज मांगी नहीं थी उम्मे फरवा ने सारी जिंदगी। तो अब इस वक्त भी उम्मे फरवा को आके पूछना चाहिए था कि मेरे कासिम का नाम कल के शहीदों में है कि नहीं, लेकिन जो जिंदगी भर की एक शर्म हया की आदत, कासिम बेटा तू पूछ के आ जा, चाचा मुझे तो अम्मा ने भिजवाया है, बता मैं अम्मा को क्या जवाब। हुसैन ने कहा, कासिम बेटा तूने मौत की बात कर दी है, पता भी है मौत किसे कहते। मजलिस के बीच का जुमला था, वहां से भी मैं रबते मसाइब दे सकता था कि हमने मोहब्बत अली की बात तो कर दी है, पता भी हमें कि मोहब्बत अली होती क्या चीज और क्या कुर्बानियां देना। खैर वो बात कल चलेगी, लेकिन अभी इतनी सी बात, कासिम तुझे पता भी है कि मौत क्या। कासिम ने जवाब दिया और वही जो 13 बरस के बच्चे की मिसाल होनी चाहिए वही जवाब दिया, चचा मौत आला मिनल असल, शहद से ज्यादा खुशगवार मीठी और प्यारी चीज है मौत। तो एक मर्तबा हसन मुश्तबा के लाल का जवाब तो आका ने सुना, फिर भी कासिम के सवाल का जवाब नहीं दिया। कासिम को सीने से लिमटा के कासिम को सूंघने लगे और कहने लगे, कासिम बेटा तुझसे तो मुझे भैया हसन की खुशबू आ रही, काश आज मेरा भाई हसन इस करबला के मैदान में होता तो देखता कि उसके हुसैन को क्या इम्तिहान देना पड़ रहा। कासिम ने तड़प के कहा कि चचा आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है कि कल मैं बदकिस्मत रहूंगा और मेरा नाम कल के शहीदों में नहीं है। जवाब अभी भी नहीं दिया हुसैन ने, लेकिन ऐसा जवाब दिया। हाशमी शजाद बेदार हो गई, हुसैन ने कहा, कासिम तू अपना नाम पूछ रहा, कल के शहीदों में तो तेरे छोटे भाई असगर का नाम भी शामिल है, भाई ये सुनना है, 13 बरस का है लेकिन है तो हैदर कर्रार का पोता, एक बार जोश में अंगड़ाई थी, कुर्ते के बंद टूटने लगे, आका ये बेहया फौज हमारे खेमों में दाखिल होके असगर के गहवारे पे पहुंच जाएगी। और हुसैन कैसे बताएं, कासिम बेटा असगर गहवारे में शहीद नहीं होगा, तेरे चचा के हाथ में ये शशमाहा मारा जाएगा। उधर आशूर की सुबह हो गई और जब भी किसी शहीद का लाशा आता, उम्मे फरवा तड़प के कासिम को देखती है, कासिम बेटा तू अब तक जिंदा बैठा, अली अकबर का लाशा आ गया, उम्मे फरवा के दिल पे क्या कयामत गुजरी होगी। लेकिन जब ज़ैनब कुबरा के बेटों आन मोहम्मद के लाशे आ गए, अब तो उम्मे फरवा ने कासिम को देखते ही नाराजगी के से मुंह फेर लिया। कासिम, मेरी शहजादी के लाल मारे गए, मेरी शहजादी कौन मारा गया, मेरी शहजादी का मोहम्मद मारा गया, तू अब तक जिंदा? कासिम ने जो नाराजगी देखी तो हाथ जोड़ ली और एक मरतबा कहा, अम्मा किसी से भी पूछ ले, सुबह से बार बार चचा के पास जा रहा हूँ, चचा मुझे जिस्म से लिपटा के ये तो कहता तुझसे भैया हसन की खुशबू आ रही है, लेकिन मख्तल में जाने की इजाजत नहीं देता। दो रिवायतें, एक तावीज वाली रिवायत, सारी रिवायतें पढ़ने का वक्त नहीं, और एक ये रिवायत। एक मरतबा उम्मे फरमा ने कहा, अच्छा कासिम, अब मैं तेरी सिफारिश का इंतजाम करती हूँ, ये कह के सीधी ज़ैनब कुबरा के पास आई। आका हुसैन से तो जिंदगी में कभी बात नहीं की शर्म की वजह से। कहा, शहजादी ज़ैनब कुबरा, आप मुझसे एक सवाल अक्सर करती थी, आप अक्सर मुझसे कहती थी, उम्मे फरवा पूरे मदीने की औरतें, पूरे अरब की औरतें, पूरी दुनिया की औरतें ज़ैनब के पास आती हैं, अपनी हाजतें पेश करती हैं, अपना सवाल पेश करती हैं, उम्मे फरवा तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपकी यह ख्वाहिश पूरी करने आई हूं, और आज उम्मे फरवा आपके दरवाजे पर सवाली बन के आई है, एक सवाल लेके आई हूं, शहजादी मेरी हाजत पूरी करेंगी, मेरा सवाल पूरा करेंगी? ज़ैनब तो कब से इंतजार कर रही थी, कभी तो फरवा ये जुमला कहें। एक मरतबा तड़प के कहा, फरवा कहे का नहीं, पहले आप वादा करें कि मेरा सवाल पूरा करेंगी, मेरी हाजत पूरी करेंगी। ज़ैनब ने कहा, अच्छा मुश्किल कुशा की बेटी तुझसे वादा करती है, बस एक बार कासिम को आगे बढ़ा दिया और कहा कि शहजादी मेरे कासिम को किसी तरह से मरने की इजाजत दिलवा दीजिए, आका से कहिए मेरा कासिम भी अब मैदान में जाएगा। ज़ैनब ने सर से पैर तक पहले फरवा को देखा और फिर कासिम को देखा। कासिम बेटा, मुझे भैया हसन अब तक याद है, मैं कैसे तेरी सिफारिश करूं, लेकिन उम्मे फरवा से वादा कर चुकी हैं। फिज़ा से कहा, भैया को बुला के लाना। हुसैन आए, बहुत लंबी मजलिस हो गई है तो मसाइब को मुख्तसर करना है। एक मरतबा कहा, हुसैन अब कासिम को भी मख्तल में जाने की इजाजत दो। हुसैन ने हैरत से देखा, ज़ैनब बहन ये तुम कह रही हो, भैया हसन की निशानी, भैया हसन का लाल, क्या भैया हसन भूल गए? ज़ैनब ने तलब के कहा, लेकिन क्या करूं, फरवा से वादा कर चुकी हूं, मेरे कासिम को मख्तल में जाने दे। एक मरतबा हुसैन ने सर से पैर तक देखा, अच्छा कासिम बेटा जा। उम्मे फरवा ने फिर हाथ जोड़े, ज़ैनब से कहा, शहजादी एक लम्हे ठहर जाइए। अपने खेमे में गई, संदूक खोला, एक मरतबा मामा लेके आई, ज़ैनब के हवाले किया, कहा, शहजादी आका से कहिए अपने हाथ से यह अमामा कासिम को पहनाए, ये कासिम के बाबा हसन मुश्तबा का अमामा है। अरे कासिम मख्तल में जाए तो हसन की शबी बन के जाए, हसन जैसा बन के जाए। और कासिम चला, इतना कमसिन था कि घोड़े पे बैठ भी नहीं सकता था। अब्बास ने गोद में लेके कासिम को सवार कराया, मगर था तो शेर खुदा का पोता ना, था तो अब्बास और हुसैन का भतीजा ना, था तो हसन का लाल ना, ऐसा जिहाद किया। वाकयात आपके सुने हैं, शामी पहलवान के सातों बेटे मारे गए, हत्ता वो भी जिंदगी खतरे में हुई। एक बार आवाज दी, मेरी मदद को आओ, सारा लश्कर दौड़ा, सारा लश्कर दौड़ा, कासिम घोड़े से जमीन करबला पे गिरे, जन्नत का फूल बिखरने जा रहा है, फूल की पत्तियां जमीन करबला पे फैलने जा रही है। एक मरतबा कासिम जमीन करबला पे गिरा, एक जुमला जो नहीं, मसाइब कुछ बाकी है, लेकिन एक खास जुमला, करबला में जिस शहीद ने घोड़े से गिर के हुसैन को आवाज दी, हुसैन एक बार उसकी मदद को आए, मगर ये तारीख का जुमला है कि जब कासिम ने चचा को पुकारा तो जितनी तेजी से हुसैन कासिम के सराहने पहुंचे, इतनी तेजी से किसी शहीद के करीब नहीं गए, इतनी तेजी से कि खुद हमारे साथ की फौज को यकीन नहीं आ रहा था। सुबह से देख रहे थे हुसैन आते हैं, मगर इतनी तेजी से, चुनाचे घबरा के उसकी फौज भागी, इस तरह भागी कि दाई तरफ के घोड़े बाई तरफ दौड़े, बाई तरफ के घोड़े दाई तरफ दौड़े, इतनी तेजी से हुसैन करीब पहुंचे। मगर ये खाली घोड़े नहीं दौड़ रहे हैं, इन घोड़ों के दरमियान जमीन करबला पर 13 साल का एक गुलबदान ये घोड़े इधर से उधर दौड़े और हालत ये हो गई कि बाद रिवायतों में इमाम से मंसूब एक जुमला है, मेरा सलाम करबला के उस शहीद पर जिसकी दाई पसलियां टूट के बाई तरफ चली गई हैं, बाई पसलियां टूट के दाई तरफ आ गई हैं। मेरे मरहूम उस्ताद एक जुमला कहते थे, मौलाना मुस्तफा जौहर साहब, करबला के तमाम शहीदों ने हर मुसीबत में हुसैन का साथ दिया है, मगर एक मुसीबत ऐसी है सिर्फ कासिम ने चचा का साथ दिया, और वो है जिस्म की पामाली, जिस्म का टुकड़े टुकड़े होना, या हुसैन का बदन पामाल किया गया या कासिम का। लेकिन मेरे मरहूम उस्ताद कहते थे यहाँ भी एक फर्क है, हुसैन का बदन पामाल हुआ हुसैन की शहादत के बाद, मगर कासिम जिंदा था। जब इधर के घोड़े उधर दौड़े, 13 बरस का गुलबदन, हुसैन सरहाने आए, इतनी तेजी से सरहाने आए, फिर भी कहा, कासिम बेटा आंखें खोलो, तेरे चचा के लिए ये बहुत शाक है, तूने पुकारा और मैं जरा देर से आया। कासिम ने आंखें खोलते ही कहा, बाबा हसन मुश्तबा मेरा सलाम लीजिए। कासिम, क्या मौत को इतना करीब देखकर भूल गए? ये तेरा चचा आया है, तेरा बाप नहीं आया है? नहीं नहीं, ये सलाम इसलिए किया। इधर कासिम घोड़े से गिरे, उधर जन्नतुल बकी से हसन मुश्तबा चले, आए मेरे लाल घबराना नहीं, तेरा बाप तुझे लेने के लिए आ रहा। आखिरी जुमला, हुसैन ने अबा के दामन में कासिम का बदन जमा किया और ये लाशा लेके खेमे की तरफ चले। हर शहीद का लाशा लेके खेमे में दाखिल होते हैं, आज दर खेमा पे रुक गए, वहां बीबियां इंतजार कर रही, बहुत देर हो गई, इससे पहले तो किसी लाशे के आने में देर ना हुई। ज़ैनब कुबरा हालात मालूम करने दर खेमा के करीब आई, पर्दा हटाया, देखा हुसैन तो दर खेमा पर खड़े, खाली हाथ खड़े, लाशा नहीं। एक मरतबा घबरा के कहा, भैया मेरे कासिम का लाशा। हुसैन ने एक बार अबा की जानिब इशारा किया, ये जो गठरी देख रही है ना, ये है कासिम का लाशा। भैया तू ये ले लाशा लेके खेमों में क्यों नहीं आया? कहा, देख मैं नहीं चाहता कि उम्मे फरवा की निगाह इस पर पड़े, इसको उम्मे फरवा से छुपाना, कोई माँ अपने 13 बरस के बेटे की ऐसी लाश नहीं देख सकती। मगर उधर ज़ैनब के पीछे उम्मे फरवा भी आ रही, जैसे ही ये जुमला सुना, आगे बड़ी जिंदगी में पहली और आखिरी बार उम्मे फरवा ने हुसैन से बात की, कहा आका जरा दिखाइए तो मेरे कासिम पे क्या गुजरी है। अब जो हुसैन ने अबा को खोला, बदन के टुकड़े टुकड़े नजर आए, उम्मे फरवा ने आवाज दी, ऐ शहजादी ज़ैनब, ऐ कुलसूम, ऐ रबाब, ऐ रुकैया, ऐ सकीना, ऐ कुबरा, जरा आके मुझे मुबारकबाद दो, अल्लाह ने मेरी कुर्बानी को सबसे ज्यादा कुर्बान कबूल किया, हाय मेरा कासिम किस तरह से जमीन करबला में बदन टुकड़े।